दामोदर राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जीव गोस्वामी प्राण धन हे, श्रील जीव गोस्वामी प्राण धन हे, जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। कृष्ण दास प्राण धन हे, श्रील कृष्ण दास प्राण धन हे, जय राधा माधव, राधा माधव राधे। श्रील जय देव प्राण धन हे, जय राधा छेल चिकन, राधा छेल चिकन राधे। श्रील भूगर्भ प्राण धन हे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री राधा शैल चकन की, श्री गिरिधारी गोवर्धन की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ये मंदिर जो है राधा दामोदर का मंदिर, तो बंद होने पर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कारण यह है कि हमारे संस्था का निर्माण का विचार जो है वो इस जगह पर बनाया गया। हरे कृष्णा आंदोलन क्या आज है, उसका रूपरेखा, उसका चिंतन, उसका मंथन इस जगह पर हुआ है। हमारे प्रभुपाद जी वृंदावन में संन्यास लेकर आए तो यहाँ पर आगे एक जमुना किनारे मंदिर है, उसका नाम है राधा वंशी गोपाल, उसमें रहते थे। 5 रुपया महीना भाड़ा लेकर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। वो जगह मेरे दोस्त की है आज भी। तो वहाँ पर उन्होंने गीता का लेखन किया था। तो फिर यहाँ के गोस्वामी ने उनको बुलाया कि आप हमारे पास रहो, जीव गोस्वामी के जगह पर रहो। तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उनको 2 कमरे दिए गए। एक कमरे में किचन दिया गया जो रूपक गोस्वामी के समाधि के पास था, और उसके सामने एक कमरा दिया गया जिसमें वो बैठकर लिखते थे। 2 कमरे दिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर 3 साल रहे, अराउंड 61 to 64। और उन्होंने यहाँ पर रहकर मग्न होकर, एकाग्र चित्त होकर, समर्पित होकर, सब कुछ भूल कर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का अनुवाद किया है 3 खंड में, और वो भी एक खंड बनाया, लिखा, फिर छपाई के लिए उधारी में दिल्ली में छपवाया उसको, उसको रोड पे खड़ा रह के बेचा, थोड़ा धन आया, उससे दूसरा किताब बनवाया, इससे पहले पेमेंट किया उसका, फिर वापस दूसरा खंड लिखा उसका, फिर उसको उधारी में बनवाया, फिर उसको बेचा, फिर उसका पैसा आया तो उसको पैसा दिया उधारी का, और तीसरा खंड बनाया ऐसा उधारी में। तो वो प्रिंटर का इंटरव्यू लिया गया बाद में, कि वो पूछते थे प्रभुपाद को, आप क्यों उधारी में बनाते हो, क्यों इतना कष्ट करते हो आप? तो कहते कि विश्व की धरोहर है ये, इसको पश्चिम जगत में जाके बांटना है मुझे। इतना कष्ट करके अकेला आदमी उधारी पे बनाता था उसको। जब तीनों खंड बिनकर तैयार हो गए तो फिर उसकी उन्होंने कॉपीज बनाई और वो लेकर वो विदेश में चले गए। उनका खुद का सामान बहुत कम था लेकिन लगेज किताबों का बहुत सारा था। तो इस जगह पर वो एक कमरे में बैठकर लिखते थे, तो दोपहर को पुजारी उनका भोजन का प्लेट है ना, उनके दरवाजे के बाहर रखते थे। लेकिन प्रभुपाद जी दिन भर लिखने में इतने मग्न हुआ करते थे कि उनको भोजन का होश ही रहता नहीं था। शाम को जब उनका लिखान कम होता, बंद होता था, तब वो रूम के बाहर आते थे तो दोपहर का रखा हुआ प्लेट वहाँ दिखते थे, फिर उसको पाते थे। फिर वो पाने के बाद में, मंदिर बंद होने के बाद में, यहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटी है, उसके बीच का जगह झाड़ू मारते थे, साफ करते थे। कभी कभी यहाँ से जाकर लोई बाजार में भिक्षा मांगते थे, दुकानों में जाकर, यहाँ पर हम लोग आज खरीदी करते हैं। प्रभुपाद जी माधुकरी करते थे वहाँ पर जाके। तो प्रभुपाद जी का जो पूरा चिंतन है कि हरे कृष्ण आंदोलन में क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, कैसे बैठूँ प्रचार करूँगा, ये सारा चिंतन और प्लानिंग जो है ना वो इस जगह पर हुआ है। इसके साथ साथ इस जगह पर कई सारे आचार्यों के विग्रह हैं, क्योंकि पहले ज़माने में ये सारे विग्रह अपने अपने मंदिर में थे। लेकिन एक समय ऐसे आया कि आचार्य लोग चले गए, शरीर छोड़ के चले गए, उनके विग्रहों को देखने वाला कोई नहीं था। उस समय जीव गोस्वामी उसके लीडर थे, लीडर। तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, फाइनेंशियल कारणों के लिए ये सारे मंदिरों से विग्रह लेकर अपने मंदिर में रखे। इसलिए यहाँ पर चार विग्रह हैं और एक पांचवा गोवर्धन शिला भी है। तो बीच में जो राजा दामोदर जी हैं वो जीव गोस्वामी के खुद के आचार्य, खुद के विग्रह हैं। वो रूप गोस्वामी उनके चाचा थे, उनके पिताजी का नाम अनुपम था, अनुपम रूप गोस्वामी के भाई थे और सनातन भी उनके सगे भाई थे। तीन भाई थे वो, दो सन्यासी बने, एक गृहस्थ बना। तो गृहस्थ का जो बेटा था वो जीव गोस्वामी है। तो जीव पर रूप गोस्वामी का बड़ा प्रेम था, तो जीव गोस्वामी के लिए उनको स्वप्न आया, राधा रानी उनके स्वप्न में आई और स्वप्न में उनको रूप गोस्वामी को उन्होंने मूर्ति कैसे अपने हाथ से बनानी वो सिखाया। और रूप गोस्वामी स्वयं मूर्तिकार नहीं थे लेकिन अपने भतीजे के प्रेम के कारण, राधा की कृपा से, उन्होंने अपने हाथ से राधा दामोदर के विग्रह बनाए और रूप गोस्वामी को भेंट में दिए, उनको स्थापन किया गया। तो ये मेन मंदिर का नाम है राधा दामोदर मंदिर, जो जीव गोस्वामी के द्वारा पूजित हैं। और उनके राइट साइड में अगर मैं ऐसा बैठा हूँ, राधा दामोदर, और राइट साइड में बड़े विग्रह हैं राधा वृंदावन चंद्र, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विग्रह हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं। उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखने के पहले 90 साल की उम्र में सबका आशीर्वाद लिया जाके कि मैं 90 साल का हूँ, हाथ कांप रहा है, आंखों से दिखने रहा है, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, तो मुझे कैसे लिख पाऊँगा, जो आशीर्वाद दो। सभी उस समय के गौड़ियों का उन्होंने आशीर्वाद लिया, फिर 90 साल की आयु में उन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया। चैतन्य महाप्रभु के बचपन की लीलाओं का संग्रह जो है ना, संकलन, उन्होंने मुरारी गुप्ता और स्वरूप दामोदर इनके नोट्स के द्वारा किया। और उत्तरार्ध जो था उनका जीवन का, उनका संकलन उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पर बैठकर काफ़ी प्रवचन किए थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु की बड़ी यादें बताई थी उन्होंने, उसको संकलित करके उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ बनाया। तो उनके ये पर्सनल विग्रह है राधा वृंदावन चंद्र। फिर राधा माधव, वो जयदेव गोस्वामी के विग्रह हैं। जयदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी थे, जगन्नाथपुरी में थे, तो स्वयं जगन्नाथ भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या से उनको विवाह करने का आदेश दिया। वो ब्राह्मण भी भगवान से प्रार्थना करता था रोज कि मेरी कन्या उपहार हो गई है, उसको अच्छा कोई भक्त पति चाहिए। तो भगवान ने ब्राह्मण को भी स्वप्न दिया कि जगन्नाथपुरी में दूर से कोई ब्रह्मचारी आया है, वो इस जगह पर रहता है, उसके पास अपनी कन्या को लेके जाओ और विवाह का प्रस्ताव दो। तो जयदेव जी तो ब्रह्मचारी बनने आए थे, लेकिन भगवान ने आदेश दिया, फिर उन्होंने विवाह किया। उसका नाम पद्मावती था। पद्मावती को विवाह करके वो मायापुर चले गए और वहाँ पर उन्होंने गीत गोविंद लिखा। कल हमने कहाँ गए थे हम लोग? कल मान मंदिर के नीचे बैठे थे, गहवर कुंड में बैठे थे ना, वहाँ पर हमने बताया ना आपको कि राधा रानी के चरणों में भगवान सर रखते हैं। तो जयदेव गोस्वामी उनके गीत गोविंद ग्रंथ में इस सब प्रसंग का वर्णन करते हैं कि राधा रानी रूठी हुई है और वो मान नहीं रही है, तो कृष्ण भगवान उनके चरणों पर अपना मुकुट निकाल कर सर रख रहे हैं। तो ये बात जो है ना, उनको लिखने को नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? परम भगवान है वो, और राधा रानी के चरणों पर सर रखना कैसा मुमकिन हो सकता है? तो वो संकोच हो गया खुद को, उनको खुद से लिखा नहीं गया। वो लीला में दर्शन कर रहे हैं कि भगवान चरणों पर सर रख रहे हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाया उसको, उसने इतनी इतनी हिम्मत नहीं उनको, तो वहीं छोड़ दिया उसने अधूरा। और वृंदावन में जमुना गंगा जी में उधर शाम स्नान करने गए, उधर चंपाटी में, तो उतने में कुछ देर में वापस आ गए वो जयदेव गोस्वामी। मतलब ऐसा नहीं कि स्नान करने को कम से कम लगता है आधा पौना घंटा, उसके तुरंत बीच में लौट के आए वो। उन्होंने कहा कि अरे पद्मावती कहाँ पर हो, भोजन तैयार हुआ क्या, भूख लग रही है मुझे। तो पद्मावती कहती है, अरे तुम अभी अभी गए थे, अभी आ गया, कोई बात, चलो भोजन तैयार है, खाओ आप। तो बिठाती है उनको, भोजन कराती है। तो भोजन करने के बाद बोलते हैं, मैं अभी लिखने को आगे जाता हूँ, आगे मैंने लिखना छोड़ा है वो पूरा करता हूँ। अंदर जाते हैं और वो श्लोक पूरा करते हैं जो अधूरा छोड़ दिया गया था, पूरा करते हैं उसको, कि भगवान ने सर भी रखा और आंसू भी बहाए और चरण कमल भी धोया उसका, राधा रानी का। और ये लिख के फिर चले जाते हैं, फिर कुछ ही मिनटों में वापस आते हैं और बोलते, पद्मावती भूख लग रही है, खाना खिलाओ, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। तो पद्मावती कहती, अभी अभी तो खाना खा के रहे थे आप, क्या पद्मावती पागल हो गए क्या, मैं तो स्नान किया उधर, कपड़े धोए मैंने, कपड़ा नया पहना, और टाइम लगता है उसमें, मैं जाके पौना घंटा एक घंटा हो गया अभी। नहीं, आप 10 मिनट में लौट के आए थे, आपने भोजन भी किया, अंदर भी गए, लिखा भी आपने जाके, दाओ देखो आप, अंदर जाके देखो। तो अंदर जाकर देखते हैं तो मोती जैसे अक्षर से वो श्लोक पूरा किया हुआ नजर आता है उनको, जो उन्होंने नहीं लिखा है, उनके हस्ताक्षर नहीं है वो अलग हस्ताक्षर है। अति सुंदर हस्ताक्षर में वो श्लोक पूरा किया हुआ उनको दिखाई पड़ता है। तो उनको साक्षात्कार होता है कि स्वयं भगवान गोविंद ने आकर तुम्हारे घर पे प्रसाद पाया तुम्हारे हाथ से, और ये श्लोक पूरा किया जिसको लिखने में मुझे संकोच हो रहा था। तो वो गीत गोविंद जिसमें राधा रानी की मान लीला का वर्णन भी है, तो वो जयदेव गोस्वामी के राधा माधव विग्रह थे जो उधर चंपाटी में उनकी सेवा करते थे। तो ये राधा माधव जी के विग्रह जो है वो जयदेव गोस्वामी के, उनके बाद में जो विग्रह हैं वो छोटे से हैं, उनका नाम है राधा छैल चिकन। उसका मतलब क्या होता है? जो छलिया है वो छद्म लीला करता है, छैल छैलू छलू, उसको छैलू बोलते हैं प्रेम से। तो वो भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह हैं, और भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ महाराज के बड़े निकट के मित्र थे। जब लोकनाथ महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप वृंदावन चले जाओ, तो भूगर्भ गोस्वामी बहुत रोए। बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, ये जा रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनके बिना रह नहीं सकता। तो महाप्रभु उनको भी बोला कि आप भी जाओ वृंदावन में। वो दोनों वृंदावन में आए और दोनों वृंदावन के वनों में भटकते थे, रोते हुए भगवान का नाम लेते हुए। तो भूगर्भ लोकनाथ गोस्वामी दोनों सबसे पहले वृंदावन में आए हैं, रूप और सनातन गोस्वामी के पहले आए। तो भूगर्भ गोस्वामी की समाधि भी इस मंदिर में है और उनके विग्रह भी इस मंदिर में है। उसके बाद में यहाँ पर एक गोवर्धन की बड़ी शिला है, इतनी विशाल शिला है कि ऐसा जाइगेंटिक, मतलब हमारे पैर से भी बड़ा साइज का पैर का चिन्ह है उसके ऊपर। नॉर्मल साइज क्या होता है, 6 फुट के आदमी का इतना इतना होता है, उसका एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है उसके ऊपर। उसकी कहानी ऐसी है कि सनातन गोस्वामी गोवर्धन की दीर्घ परिक्रमा करते थे, 40 किलोमीटर वाली, और रोज करते थे रोज। तो 70 वर्ष की आयु होगी उनकी, फिर भी चलने को नहीं हो रहा है, फिर भी चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान को रहा नहीं गया, कितने वृद्धावस्था में नियम नहीं तोड़ रहे हैं। तो भगवान बालक बन के उनके सामने आए, बोले महाराज जी बस अभी आपने इतना साल परिक्रमा किया, अभी और जरूरत नहीं आपको करने की, आपने सब कुछ कर लिया, आपने इतना करना था। तो बोले नहीं नहीं बेटा, मेरा नियम है, मुझे करना चाहिए, चाहे मैंने कितने साल भी किया होगा। तो बालक बहुत जिद करता, नहीं नहीं बाबा बंद करो, आप बंद करो। तो बाबा नहीं मानते, चलते हैं, और ये चल रहे हैं, पीछे पीछे बालक भी आके बात कर रहा है उनसे। बीच में बालक अदृश्य हो जाता है, वो बालक कृष्ण थे स्वयं। वो कृष्ण स्वयं जाते हैं गोवर्धन पे, और गोवर्धन पे खड़े होकर मुरली बजाते हैं। जब मुरली बजाते हैं तो पत्थर पिघलता है, जब पत्थर पिघलता है तो उनके पैर के निशान उस पर आ जाते हैं। जब मुरली बंद करते हैं तो वो वापस पूर्व जैसे हो जाता है। तो भगवान वो शिला जो है जिस पर अपने पैर का चिन्ह उठा हुआ है, जो बजाते हुए तो जब वो मुरली बजा रहे थे तो एक गाय भाग भाग के आती है और उसी पत्थर पर पांव रखती है, तो उसके भी पैर के निशान आते हैं। भगवान एक लकुटी को लगाकर मुरली बजा रहे हैं तो लकुटी के निशान भी आ जाते हैं। एक पैर आधा है उसका भी निशान आता है, एक पैर पूरा है। कौन सा पैर आधा है, कौन सा पैर पूरा है, बताओ। जय जय श्री राधे श्याम। तो सारा चिन्ह निर्माण होता है, तो फिर वो भाग भाग के आके महाराज जी को देते हैं, लीजिए आप इसकी चार परिक्रमा कीजिए। फिर बाबा नहीं मानते, फिर सपनों में आके कृष्ण दर्शन देते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं वही था जिसने आपको शिला दिया है, कि मैं कृष्ण था। तो मेरा आदेश यह है कि आप चार परिक्रमा करो और गोवर्धन परिक्रमा की कोई जरूरत नहीं, पूरा लाभ मिलेगा आपको। तो उसके बाद में सनातन गोस्वामी ने वो शिला का चार परिक्रमा करना अपने कमरे में ही किया और आगे का जीवन बिताया। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो।